नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंत में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ बाजार विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर। घरेलू शेयर बाजार में शुरूआती नुकसान के बाद सुधार दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रक्षा उत्पादों में अब तक की सर्वाधिक बढ़त की सराहना की और जून के दौरान घरेलू ऑटो क्षेत्र की बिक्री में 0.7% की बढ़ोतरी। नजर डाल देते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजारों में आज दबाव के कारण शुरुआती दौर में बिकवाली नजर आई, हालांकि कारोबार के अंतिम सत्र में खरीदारी के समर्थन से सुधार भी दर्ज हुआ। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.1% की मामूली गिरावट से 53 अंक गिरकर 79,997 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.1% के मामूली नुकसान से 22 अंक गिरकर 24,324 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान लगभग 380 कंपनियों के शेयरों ने 52 सप्ताह का सर्वाधिक उच्चतम स्तर भी छुआ। बीएसई मिडकैप सूचकांक सत्र के दौरान नए रिकॉर्ड स्तर को छूने के बाद 0.8% की बढ़त से बंद हुआ। बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक भी रिकॉर्ड स्तर को छूने के बाद 0.7% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज पूर्व स्तर 83.49 रूपये के आसपास ही दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स मामूली गिरावट से 105 के स्तर पर दर्ज हुआ। पुनीत, शुरुआती चर्चा में सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, क्योंकि बाजार का स्तर इतना ऊंचा हो गया था कि शायद वहीं से कहीं न कहीं एक नजर आ रहा था कि थोड़ा सा तो सुधार शायद जरूरी भी था और बाजार की उम्मीद के मुताबिक भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये तो मानना ही पड़ेगा कि इतने ऊंचे स्तर पर लोग भी अपनी पोजीशन से भी क्लियर करेंगे और थोड़ा बहुत ही सही बट मुनाफा भी जरूर बुक करेंगे।
बिल्कुल अमित, आपने सही कहा। और पिछले यदि हम एक महीने को देखें, जब चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद वहां बाजारों में बहुत उथल पुथल रही, लेकिन उसके फौरी बाद काफी तेजी से बाजार बढ़े और करीब करीब पिछले 30 दिनों से ये बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो मुझे लगता है ये जो प्रॉफिट बुकिंग देखी, थोड़ा पुल बैक हमने देखा, वो एक अच्छा हेल्दी पुल बैक है बाजार के लिए और एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो जरूरी है।
चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन तब तक बाजार की पूरी हलचल क्या हुई वो जान लेते हैं लालिमा अनीजा डैंग से।
Thank you very much, Amit ji. Let's have a look at the stocks in detail now. India's equity benchmark indices closed mixed after recovering the final hours today. At close, the Sensex slipped 53 points or 0.07% to close at 79,997. Nifty registered a slim gain of 22 points or 0.09% to settle at 24,324. Nearly 380 companies hit their fresh 52-week high in intraday trade on BSE. In the broader market, at the BSE mid-cap index hit its fresh all-time high during the session. It closed 0.75% higher. BSE small cap index also hit a fresh record high before ending 0.70% higher. 17 out of 30 companies registered gains in Sensex index. The top three gainers today were SBIN 2.48%, Reliance 2.32% and Hindustan Liver 2.01%. Conversely, the three major laggards were HDFC Bank 4.55%, Titan 1.99% and Tata Steel 0.85%. In sectoral indices at the BSE, 14 out of 20 sectors logged gains. The top three gainers were oil and gas 1.77%, energy 1.70% and industrials 1.48%. Conversely, financial services 0.59%, consumer durables 0.43% and bankers 0.18% were the three major laggards. The overall market breadth at the BSE was positive. Out of 4,016 companies, the shares of 2,242 companies advanced, 1,686 declined and 88 remained अनचेंज्ड।
पुनीत, बाजार की चर्चा के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस खबर को भी मैं पहले आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद हम चर्चा के दौर को जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023-24 में घरेलू रक्षा उत्पाद में मौद्रिक आधार पर अब तक की सर्वाधिक बढ़त हासिल करने के लिए देश की सराहना की है। उन्होंने इस उपलब्धि में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार क्षमताओं को और अधिक बढ़ाने और देश को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा और विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि इससे देश का सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये खबर की महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम डिफेंस क्षेत्र के जो स्टॉक्स हैं उनमें एक लगातार रैली देख रहे हैं और उनमें अभी भी संभावना की जो अपार क्षमताएं हैं वो बनी हुई हैं। कैसा क्या मानते हैं आप, और अभी भी वो निवेशक जो कहीं इन चीजों में पीछे रह गए हैं, क्या जो ये रक्षा क्षेत्र है उसमें अभी भी उनके लिए संभावनाएं कहीं ना कहीं बची हुई नजर आती हैं?
बिल्कुल अमित, आपने सही कहा और ये सही पॉइंट आउट किया कि जो यदि हम पिछले एक साल की मार्केट रैली को देखें तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है शेयर्स में वो रहा है जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, चाहे हम बात करें एयरक्राफ्ट बनाने कंपनीज या शिपिंग कंपनीज या दूसरी जो जितने भी कंपनीज जुड़ी हुई है डिफेंस सेक्टर से, हमने देखा है वहां पर बहुत बड़े गेन्स रहे हैं। और ज्यादातर ये कंपनियां जो है गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो ओन करती हैं डिफेंस प्रोडक्शन, मेजर प्रोडक्शन को। और प्रधानमंत्री ने भी कई बार इसको पॉइंट आउट किया कि जो हमारी जो उपलब्धियां हैं और जो स्टॉक मार्केट में गेंस हैं उसका जो बेस है वो हमारी कैपेबिलिटीज हैं, जो अब भारत ना सिर्फ अपनी जरूरत के लिए डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, हम बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो और बड़े हाई टेक्नोलॉजी डिफेंस इक्विपमेंट गन्स हैं या एयरक्राफ्ट हैं वो भारत एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो मुझे लगता है ये एक रिकग्निशन है जो हमने स्टॉक मार्केट में उपलब्धियां देखी उस कैपेबिलिटीज की जो हमारी कंपनीज को मिली है। इनफैक्ट जो आपने बात कही कि आज क्या यहां से पॉसिबिलिटीज हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज हैं, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि अब तो काफी म्यूचुअल फंड्स पहले के मुकाबले अभी हाल में ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च हुई हैं जो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं। मुझे लगता है कि निवेशकों के लिए वो सेफर रूट है जो निवेश करना चाहते हैं,
जो लगातार निवेश करना चाहते हैं और इसका फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन बाजार के प्रति उतने जागरूक नहीं है,
तो उनके लिए काफी सेफ रूट होगा कि वो डिफेंस सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें वो इन्वेस्ट करें।
80,000 के स्तर के आसपास अगर सेंसेक्स है और जब निफ्टी हमारा भी इतना ऊंचाई पे रहता है 24,500 के स्तर को अगर हम बात करें, ये कितना एक स्थायी नजर आता है या इसमें कहीं ना कहीं इस स्तर पे आप दबाव महसूस करते हैं या ऐसी उम्मीदें लगती हैं कि ये स्तर ऐसा है जहां कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली का दबाव रहेगा, या अभी भी इतनी अच्छी संभावनाएं हैं कि ये स्तर बहुत छोटा नजर आता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका कहना है कि शेयर बाजार की दौड़ में लगाम नहीं लग सकती।
देखिए अमित, ये कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है स्टॉक मार्केट में, आप जानते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन वैल्यूएशंस पर, क्योंकि प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स को हम देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, अर्निंग्स ग्रोथ देखें, तो मुझे लगता है बाजार काफी रिच वैल्यूएशंस पर है, काफी ऊंची वैल्यूएशंस पर है और डेफिनेटली यहां पर कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। बिकॉज एक ये मानना कि स्टॉक मार्केट में गिरावट नहीं आ सकती और इसको सोचकर हम एक इनडिस्क्रीट प्रकार से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो शायद वहां खतरा बहुत है। जरूरी यही है कि जो सेफ इन्वेस्टिंग प्रैक्टिसेज हैं उनको फॉलो करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, चाहे आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें, लेकिन हालांकि ये जरूर बात है कि भारत में अभी बहुत संभावनाएं हैं और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय शेयर बाजार और ऊंचाइयां हासिल करेगा, लेकिन हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि फिलहाल क्योंकि बहुत तेजी से बाजार बढ़कर आए हैं तो थोड़ी यहां पर गिरावट आ सकती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी।
एनएसटी की जो टैगलाइन है सोचकर समझकर निवेश करें,
वही
वो हमेशा आपको
अप्लाई वो करनी चाहिए।
बट डोंट यू फील पुनीत दैट फ्रॉम 70,000 टू 80,000 इट हैज जस्ट जम्प लाइक यू अ चाइल्ड गेट्स अ डबल प्रमोशन, दिस हैज जस्ट बीन अ फैंटास्टिक जम्प। समटाइम्स इट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ स्केयर इन पीपल्स माइंड्स दैट अरे ये क्या हो रहा है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू।
नो यू आर राइट, सो आई वुड से दैट एंड इन फैक्ट इफ यू एनालाइज दिस जम्प इट हैज बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली बाय फोर स्टॉक्स विच रोज वेरी शार्पली, लार्ज वेटेड स्टॉक्स, एंड दैट इज वाई दिस 10,000 जम्प केम, एंड इट इज नॉट एज इफ द ब्रॉडर मार्केट वॉज पार्टिसिपेटिंग। And in fact, this has been a trend in many markets worldwide. Mm-hmm. Even in the US, there is this so-called Fabulous 7, Fab 7, which are contributing to entire gains in S&P 500. So, in India also, we find a large number of companies may not have participated in this recent rally.
Mm-hmm.
Investors therefore need to be cautious. They need not be indiscreet in investing. But I would say yes, overall sentiment is positive. But again, I would emphasize that it needs a disciplined approach to investing to be able to make long-term wealth.
Let's talk about MSMEs, which is the bone of Indian economy, Puneet, as they always say. Now, the RBI has scheduled a meeting with several micro, small and medium enterprises, MSMEs as we call them, their associations, to understand their needs. This is a pre-budget meeting trying to assess, because there was always this payment to be done within 45 days. Some are happy, some are not happy with it. It was, I think, limited to the small and micro ones, but not the medium ones. So where do you see this going? Because this is an important issue, as MSMEs have an important role to play in our economy.
I want to add one thing. As Lalima said, MSMEs were 45 days of time. कुछ मायने में तो बेहतर थी, लेकिन अगर वही जीएसटी डिपार्टमेंट के मामले में या कुछ पिछले दिनों जो आयकर विभाग ने भी इसमें अपनी जो सीमाएं लगाई थी कि अगर आपने इस तरह की भुगतान नहीं किए हैं तो वो आपकी आय में जोड़ दी जाएगी, या अगर आप जीएसटी वाली कंपनी एमएसएमई कंपनी है अगर आप उनको पेमेंट नहीं करते हैं तो उसमें आपको जीएसटी का जो क्रेडिट था वो रिवर्स कर दिया जाएगा. क्या सरकार बजट में, जिस तरह से लालिमा ने पूछा है कि एमएसएमई को जब हम सहायता देने की बात कर रहे हैं तो इस तरह की जो अड़चने हैं, क्या सरकार इस पे सोच रही है या सरकार के दिमाग में है इस तरह की चीजें कि इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं?
देखिए, बिजनेस में नॉर्मली काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं और अलग अलग तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो सबसे पहला कदम उठाया, क्योंकि एक छोटी जो कंपनियां थी, मंझोली कंपनियां थी, उनका ये एक बहुत बड़ा कंप्लेंट थी कि उनको पैसा नहीं मिलता, वर्किंग कैपिटल बैंक से नहीं मिलता, बड़ी कंपनीज पेमेंट नहीं करती. तो मुझे लगता है सबसे पहला वो हर्डल जो क्रॉस किया कि एक प्रकार की समय सीमा बांधी गई कि इन कंपनीज को आपको समय के अंदर पैसा देना है और उनको रिपोर्ट करना पड़ता है. हर क्वार्टर में कंपनीज रिपोर्ट करती हैं अलग से कि कितना पैसा उनको एमएसएमईज का देना है. मुझे लगता है अच्छा कदम है सेंटिमेंटली. अब उसकी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हमें इनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. मुझे लगता है वो जो जैसे आरबीआई अब मीटिंग कर रहा है और क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए कि किस प्रकार का क्रेडिट मिलना चाहिए, कितने आसानी से मिलना चाहिए, और टैक्स डिपार्टमेंट जो कदम उठा रहा है, मुझे लगता है ये जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगी. लेकिन जो सेंटिमेंट है कि एमएसएमईज का पैसा बड़ी कंपनीज को समय पर देना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है.
मतलब इसकी जो मूल भावना है वो बहुत अच्छी है और सकारात्मक दिशा की
वो बहुत जरूरी है. उसके बिना ये अदरवाइज ये सक्सेसफुल नहीं होगा ये वेंचर.
Whenever such reforms are initiated, can we have a win-win? Because if you get something for the labor, then the industry is unhappy. Here, like in rural areas, the clothing business has a payment cycle of 90 to 120 days. Furniture, plywood and industries say we have a cycle of 60 days. So is it always the problem that my roof is somebody else's floor? Does that happen?
So,
or can we find a midway in between?
What happened really in these regulations was that this time limit of 45 days was actually imposed on large companies. So the smaller companies may not have that kind of pressure in terms of, you know, other MSMEs or other industries may not have that kind of a pressure in terms of compliances.
Mm-hmm.
But in terms of large companies, because they can afford to pay MSMEs, and you know, some of them may not be paying it out of, you know, various other commercial considerations. So my sense is that overall, like we said, sentiment is good. Now it has to be reworked to suit different interest groups, interest and convenience.
Mm-hmm.
So clearly it is a step in the right direction. It needs to be worked on.
It will be sorted
for sure.
एक चीज और इसी के संदर्भ में, जिस तरह से की बात की गई कि सरकार छोटी मझोली जो कंपनियां हैं उनके लिए बहुत सारे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में ये रोजगार उत्पन्न करते हैं और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को धीमी ही तरीके से ही लेकिन मजबूत दौर में ये थामे रखते हैं बढ़ोतरी की तरफ. क्या पिछले बहुत दिनों से हम चूंकि मुद्रास्फीति की दबाव भी झेल रहे थे और इस तरह से जो मुद्रा की लागत यानी कि ब्याज दरें थी वो अभी भी सकारात्मक एक स्तर पे स्थायी या स्थिर बनी हुई हैं, कंपनियों के लिए सरकार ने जब कोरोना का समय आया था उसके बाद कुछ एक तरह के इंसेंटिव्स या प्रोत्साहन के तौर पे उनको लिए कुछ फंड धनराशि प्रदान की थी। क्या सरकार इस दिशा में भी कुछ सोचेगी या बजट से हम कुछ इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? उद्योग जगत या एक विशेषज्ञ के तौर पे आपकी क्या राय है या क्या अनुमान है?
देखिए, जो मुद्रा लोन्स बहुत एक सक्सेसफुल स्कीम थी सरकार की, जो अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग लेवल की कंपनीज के लिए मुद्रा लोन्स दिए गए और बहुत सुविधा से, बहुत आराम से वो लोन्स उपलब्ध थे छोटी और मीडियम कंपनीज को,
एंड
एट बॉटम ऑफ द पिरामिड, एट इवन एट द स्मॉल स्केल सेक्टर इट वॉज रियली एप्लीकेबल। तो उम्मीद यह है कि जब जो नया बजट आएगा उसमें मुद्रा स्कीम को और एक्सटेंड किया जाएगा और उसको व्यापक किया जाएगा, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल स्कीम है बहुत ज्यादा, वहां पर बहुत रोजगार उत्पन्न हुए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो फाइनेंशियल हेल्प है सरकार, वो इस सेक्टर को और एक्सटेंड करेगी, उससे हम एम्प्लॉयमेंट भी देखेंगे और डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी जो है इंडस्ट्री की वो भी बढ़ेगी।
मतलब जो ग्रोथ के तौर पे इसकी वजह से कोई तरह की रुकावट ना आए, ये सरकार ध्यान रखेगी।
बिल्कुल, और देखिए उसका सबसे जो कॉर्नर स्टोन है वो फाइनेंशियल हेल्प है। अगर आप उनको एक अच्छे रेट पर आसानी से अगर उनको लोन्स प्रोवाइड कर पाते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन्स हैं, तो मुझे लगता है वो काफी कारगर होगा।
यू थिंक इन द कमिंग बजट, द यूनियन बजट इज लेस देन 3 वीक्स अवे पुनीत, एंड द गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम, रीनेम्ड कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट टू कैबिनेट कमिटी ऑन स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। Does that give us a sign of things to come, that there will be more focus on employment generation? It's very serious about employment because it is an issue, and for both we need skilled people and those who are educated also. The employability is less, as we know from the latest ILO report. Lots of complications there. So the focus is on employment.
Absolutely,
I think
it is quite clear now that government wants to focus on employment and empowering people to be employed.
Right.
See, because to say that we want to employ people at lower end of the pyramid where wages are low, no, I don't think that can be, you know, a desirable goal. The idea is to enable people to move up the value chain. So clearly, I think that refocus on the cabinet committee is really useful.
All right, let's hope that more employment will happen now after this budget. Let's move on. Well, Indian automobile sector saw a negligible growth of just 0.73% year on year, as per the data released today by the Federation of Automobile Dealers Associations, FADA. However, passenger vehicle sales saw a dip of 6.7%. Meanwhile, sales in tractors slipped a massive 28.3%, and commercial vehicle sales dipped 4.7%. On the other hand, the slight growth of 4.66% in overall auto sales was driven by two-wheeler and three-wheeler segments that saw on-year growths of around 5%. Even during COVID period, we saw that the rural areas had a good growth as far as automobile sector was concerned. What has happened now? Sales in tractors seeing a little dip, and
So Lalima, if you look at this data, I'm slightly worried because the passenger vehicle sales, which are really roaring in last 11-12 months,
yes,
they have come to a halt. They're in a sense that they've fallen by about 6-7%. Tractor sales, of course, again have slipped by 28%, which is huge.
Yes.
So clearly, I think there is a slowdown in that segment. You can assume that this could be seasonality, or also these numbers pertain to June. This was just before the elections. No, in a sense. So so clearly, the pre-election and slightly post-election, some spending comes to a halt because people are waiting, you know, for new policies to come into place. So this could be a blip. In a sense that it could be, you know, one-off month, but I would really like to see the numbers for next 2-3 months, because if this trend persists, then I think it will be a matter of concern for us.
लेकिन पुनीत, एक अच्छी चीज जो मैं इसमें देख पा रहा हूँ वो है कि जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की जो सेगमेंट की जो सेल है उसमें बढ़त है। क्या इसके मायने ये नहीं समझे जाने चाहिए कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि वहां पे इस तरह की बिक्री ज्यादा आमतौर पे मानी जाती है, वहां से अगर इस तरह की जो बिक्री के आंकड़े अगर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कितना स्वस्थ संकेत है?
देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि पिछले कई वर्षों से टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेल्स नीचे आ रही थी। इनफैक्ट वो एक स्टेडी डिक्लाइन था। ये पहला मंथ है जबकि अगेन हम थोड़ा सा अपटिक देख रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि देखिए, आने काफी फैक्टर्स हो सकते हैं, सीजनल फैक्टर्स हो सकते हैं इस
बारिश के
लिए, बारिश का है, उससे पहले इलेक्शंस का लेकर डिमांड होती है, तो दो तीन महीने का आंकड़े हमारे सामने जब आएंगे तो शायद ट्रेंड क्लियर होगा, पर क्योंकि ट्रैक्टर सेल्स भी थोड़ी नीचे हैं तो मुझे आई वुड लाइक टू वेट फॉर द डेटा।
नजर डाल देते हैं एशियाई बाजारों में। एशियाई बाजारों में आमतौर पर गिरावट का दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.3%, सिंगापुर का स्टेट टाइम सूचकांक 0.9% और चीन का शंघाई कंपोफिट सूचकांक 0.3% की गिरावट से बंद हुआ। हालांकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.3% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा, जबकि जापान का निकेई पूर्व स्तर पर बना रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरूआती रूझानों में मजबूती का दौर नजर आया। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.1% से 0.9% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
All right, a look at the U.S. markets. Well, in the United States, stock market was closed yesterday in an observance of Independence Day.
पुनीत, लेकिन एशियाई बाजारों की खास तौर पे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यूरोप में अगर हम देखें तो ब्रिटेन के चुनाव के नतीजे भी जो है अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सुगबुगाहट या संभावनाएं नजर आ रही थी। कितना फर्क पड़ेगा ये जो सत्ता जब परिवर्तन होता है इस तरीके से, तो जो आर्थिक नीतियां हैं ये आर्थिक स्तर पे, और यूरोप निश्चित तौर पे एक कठिन दौर से गुजर रहा है।
और दूसरी बात यह है कि यूके जो है वो खास तौर से एक अलग, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से थोड़ा उन्होंने अपने को अलग कर लिया था, तो यूरोप की इकोनॉमी जो है वो काफी बड़ा एक इम्पैक्ट रखती है। यूरोप के ब्रिटेन की इकोनॉमी जो यूरोपियन इकोनॉमी का इम्पैक्ट करती है, और वहां पर काफी बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि पहले कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी और अब वहां पर लेबर गवर्नमेंट है। लेबर गवर्नमेंट नॉर्मली एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है, फिस्कल एक्सपेंडिचर उनका थोड़ा ज्यादा रहता है, तो क्लियरली ब्रिटेन में हम देखेंगे आने वाले समय में काफी डिफरेंट पॉलिसीज होंगी। शायद टैक्सेस वहां पर बढ़े और जो एक्सपेंडिचर है, सोशल एक्सपेंडिचर है, वो बढ़े, ऐसा लगता है। उसका इम्पैक्ट जो होगा यूरोपियन इकोनॉमी पे वो दिखना होगा।
और इसके साथ साथ अगर हम एशियाई बाजारों में की भी वहां पे स्थिति देखें, तो एशियाई बाजारों में भी आज जो थोड़ी गिरावट जरूर नजर आई है, क्या मानते हैं इसके क्या असर हो सकते हैं?
अमित, देखिए सारे विश्व के जो बाजार हैं वो बिल्कुल अपने रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। तो हम देखते हैं कि कभी कभी थोड़ा करेक्शन आती है, जैसे जापान की मार्केट में हमने देखी पहले एकदम नया रिकॉर्ड स्तर बना, वहां पर करेक्शन आई, फिर रिबाउंड आया। तो ये बिल्कुल एक बाजार है इस प्रकार से चल रहे हैं अभी, कि वॉलेटाइल हैं थोड़े से, थोड़ी कंसर्न्स भी हैं, लेकिन फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि वो अप ट्रेंड है और स्ट्रांग अप ट्रेंड है।
और अगर इसके साथ साथ रुपए के भारतीय मुद्रा, उसने तकरीबन अपने आप को एक स्थिर दायरे में रखा हुआ है, ये कितना स्वस्थ संकेत है निर्यातकों के लिए, साथ ही साथ आयातकों के लिए भी, और भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी स्थिति पे।
तो जैसे अगर आप देखें तो जो रूपी, इंडियन रूपी है, ये बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है इमर्जिंग मार्केट्स में। और सर, खास कारण यह है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत वेल मैनेज्ड हैं। करीब करीब $560 बिलियन के हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो आरबीआई ने मैनेज किया है। इंटरेस्ट रेट्स को डोमेस्टिकली या सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी को वो बहुत अच्छा मैनेज किया है। तो काफी हद तक मैं कहूंगा इसका श्रेय जो है स्टेबिलिटी का, वो रिजर्व बैंक को और सरकार को जाता है, क्योंकि उन्होंने अच्छा मैनेज किया है इस पूरे बैलेंस को। जबकि बाकी एशियन करेंसीज में ऐसा नहीं हुआ है, वहां पर गिरावट रही है, तो वो स्ट्रेंथ देख रहे हैं।
अब पुनीत, आपने बात करी कि चूंकि भारतीय बाजारों में खासतौर पर एक स्थिरता है, और कहीं ना कहीं अब चूंकि पहली तिमाही बीत चुकी है, जुलाई का प्रथम सप्ताह भी आज खत्म हो रहा है, अगले कुछ दिनों के बाद हमें कंपनी जगत के पहली तिमाही के नतीजे निकलने शुरू हो जाएंगे। बाजार की जो ये जो बढ़त, अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी के आंकड़ों को देखें, क्या ये हमारे लिए मानने के पर्याप्त कारण हैं कि कंपनी जगत के नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं और उनकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो लगातार बढ़ने वाली है?
देखिए, बाजार को नंबर्स देख के तो ऐसा लगता है, लेकिन अभी तक कुछ कंपनियों ने अपने आंकड़े दिए हैं, और खासतौर से बैंकिंग क्षेत्र की जो कंपनियां, आज एचडीएफसी बैंक ने अपने आंकड़े दिए थे, वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग है। वहां पर बहुत उत्साहजनक नंबर्स नहीं आए हैं इस क्वार्टर के, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमको देखना होगा। आई एम नॉट दैट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स। मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स में स्लाइटली बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन।
ये इसकी वजह क्या कि देश चुनाव के दौर से गुजर रहा था, और अगर एचडीएफसी खासतौर पर अगर हम बात करते हैं, तो क्योंकि एचडीएफसी बैंक में और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों का विलय पूरी तरीके से अब जाके हो पाया है, ये क्या उसका भी असर हो सकता है?
देखिए, उसका असर हो सकता है, पर लेट अस सी कि ये नंबर्स जो हैं वो बाकी बैंक्स में भी उसका क्या रिफ्लेक्शन आता है या नहीं।
टॉकिंग अबाउट बैंक्स नाउ, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेनी ईयर्स दैट नाउ public sector units have become a force to reckon with, undertakings to reckon with. For a long time, they were kind of, just understated. Now, NPAs have been, now we have low NPAs, we have reduced them. When we talk of the health of economy, we also know that other parameters have been taken care of. GST collections are record. We've gotten used to record. Earlier, we used to go gaga over records, but now with 80,000, census is at 80,000, we've gotten used to every second it is a record happening. SEBI chief has recently said that, tell us about mischief makers in the market, and I'm relating this to the NPAs because this is also a sign of things to come, that the government wants to streamline the banking system and the entire economic system so that we don't have any more NPAs trying to smoothen out the already existing one.
So, Lalima, you are right. See, what happens when there's euphoria, when the markets are at record highs and everybody seems to be making tons of money, there's a tendency to get carried away. Mm-hmm. And a lot of mistakes actually happen in this phase of euphoria. So, I think it is the role of the regulators to ensure that mischief mongers don't create problems in the market and they don't mislead genuine investors. So, clearly, mm-hmm. I think the RBI, the SEBI, all the big regulators are really conscious of the responsibility. In fact, the Chief Justice of India pointed out yesterday, saying that this is a time when the regulators need to be very cautious, need to be responsible to ensure that nobody takes wrong advantage of this market.
So we all want to learn lessons from our past.
Absolutely.
And because now the economy is on track and we want it to...
And to remain on track. If somebody exploits it for wrong reasons, it could derail.
Yes, and grow from here. All right, let's take a look at the oil prices. Well, oil prices edged lower today, but were trading near their highest since late April. Brent crude was down by 0.19% to $87.26 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate crude was down 0.06% to $83.83 per barrel when reports last came in. Your comment?
So, oil prices, of course, in fact, shot up a lot because there is heightened tension in West Asia. Mm-hmm. And we know that this war is really, adding a lot of uncertainty vis-a-vis these markets. Yes. So, clearly, I think the markets are going through this phase.
Mm-hmm. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 0.2% की बढ़त के साथ 72,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 0.2% की तेजी से 90,223 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों में सोना 0.1% की मजबूती से $2,372.10 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 0.2% की मजबूती से $30.79 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, सोना चांदी अगर बहुत सारे खबरों के स्तर को भी आप देखें तो सोने चांदी ने भी जो निवेशकों को रिटर्न्स देने में कहीं निराश नहीं किया है, ये कहना तो बिल्कुल जरूरी
है। कोरोलरी क्वेश्चन वुड बी व्हाट मेक्स इट सो पेक्यूलियर दैट गोल्ड इज हाई, सिल्वर इज हाई, द स्टॉक्स आर हाई।
सो एवरीथिंग इज हाई, सो दिस इज वन ऑफ दोस गोल्डीलॉक्स सिचुएशन। बट द ट्रूथ इज दैट राइट नाउ द डिमांड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द वर्ल्ड। लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक्स are buying gold and silver, particularly silver, which is really rebounded lately.
Yes.
And so I'm quite optimistic about gold and silver prices even at these levels.
अच्छा, आज कुछ ऐसी भी चर्चाएं थी बहुत सारे दौर में कि ये देखा जा रहा था कि सरकार शायद बजट में सोने और चांदी के जो निर्यात शुल्क है उसमें कुछ कटौती कर सकती है, इस तरीके की संभावना जताई जा रही थी। क्या इस दौर में इस तरह का कदम हो पाना संभव है सरकार के लिए, और अगर ऐसा होता है तो क्या भारत में इसकी बिक्री में तेजी आएगी या जिस दौर में चल रही वैसे ही?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार इसमें कोई फेरबदल करेगी, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस आया, पहली बार 10-12 सालों में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस आया है।
ये बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं अंडरलाइन छुपी हुई।
अगर आप ड्यूटी कट करेंगे गोल्ड पे तो इम्पोर्ट सर्ज होंगे, विच यू डोंट वॉन्ट। तो क्लियरली मुझे लगता है कि कोई फेरबदल नहीं होगा एज इट इज।
अगर सरकार का राजस्व के बारे में टोटल में बात करते हैं तो देखिए, जीएसटी कलेक्शन बहुत बेहतर था, हालांकि जो पिछले महीने का जो आंकड़ा है वो उससे थोड़ा सा
सीजनली, मैंने यही ये आंकड़े जो आपको जून के आंकड़े आए हैं ऑटोमोबाइल सेल्स वगैरह के, वो सब इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जून का जो महीना था वो उतना अच्छा नहीं था। तभी मैंने कहा कि कुछ महीने हमें वेट करना होगा टू सी कि क्या ट्रेंड रिवर्सल या वो अभी एक सीजनल ब्लिप है।
लेकिन सोने चांदी में आपके हिसाब से कितनी चमक अभी भी नजर आती है निवेशकों को?
देखिए, मुझे लगता है कि सोने चांदी में अभी भी काफी इंटरेस्ट संभावनाएं ग्लोबली है, और खासतौर से अगेन मैं अंडरलाइन करूंगा कि चांदी जो है इट सीम्स टू बी आउट परफॉर्मिंग गोल्ड फॉर द टाइम बीइंग।
चांदी शायद सोने से ज्यादा तेज दौड़ लगा। चलिए पुनीत, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
यस, द हेडलाइंस अगेन फ्रेंड्स। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडेक्सेस क्लोज फ्लैट आफ्टर रिकवरिंग लॉसेज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉड्स इंडियाज हाईएस्ट एवर ग्रोथ इन डिफेंस प्रोडक्शन। एंड इंडियाज ऑटो रिटेल सेल्स रजिस्टर 0.73% एनुअल ग्रोथ इन जून। वेल, दैट्स ऑल फ्रेंड्स वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। दिस इज माई सेल्फ लालिमा अनिजा डैंग एंड माई क्वैंका अमित गोयल साइनिंग ऑफ। नमस्कार। Oh, 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 oh